नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, सरकार देश में ही विमान बनाने की नीति पर विचार कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यों का मंत्री समूह गठित। राज्य सरकारों और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को भी साथ में केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ देने की मंजूरी। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आज से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ब्रिटेन की संसद ने ब्रेग्जिट समझौता नामंजूर किया। प्रधानमंत्री टेरेसा मे को करना होगा अविश्वास प्रस्ताव का सामना। और खेलो इंडिया युवा खेलों में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने तैराकी में 7 स्वर्ण और कर्नाटक के ही एसपी लिखित ने 5 स्वर्ण जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार विमानों के घरेलू निर्माण और इसके लिए देश से ही धन जुटाने की योजना बना रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कल मुंबई में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश को भविष्य में 2300 विमानों की जरूरत है।
India is the fastest growing aviation sector and probably in the third in number now will be soon becoming on the way to be one of the largest. But to do that, we have to put so many things in place. We need technology, we need resources, we need partnerships, we need to put in place. All the players have to work in unison and work at the same time in the right manner.
श्री प्रभु ने कहा कि ये काम देश में ही होने से धन की बचत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि घरेलू यात्रा में 17 से 18% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अब माल ढुलाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है और सरकार ने पहली बार इस क्षेत्र की मजबूती के लिए नीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि हाल में ड्रोन नीति जारी की गई है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए भी ये उपयोगी बन सके। 2 दिन का ये सम्मेलन विश्व में अपनी तरह का पहला आयोजन है। 86 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के इस आयोजन से प्रतिभागियों को प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से हवाई यातायात में बदलाव के बारे में विचार विमर्श का अवसर मिला है। सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यों का मंत्री समूह गठित किया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समूह के संयोजक होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री इसके सदस्य होंगे। एक रिपोर्ट।
जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया था। ये समिति जमीन लेन देन की वैधता की जांच करेगी और उचित मूल्यांकन संबंधी सुझाव देगी। ये समूह विकास अधिकारों के स्थानांतरण पर जीएसटी लगाए जाने के विभिन्न पहलुओं का भी परीक्षण करेगा। इसके अलावा मंत्री समूह रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों पर भी विचार करेगा। अभी निर्माणाधीन फ्लैटों और मकानों पर 12% जीएसटी है, जबकि प्रमाण पत्र सहित पूरी तरह तैयार फ्लैट पर कोई जीएसटी नहीं है। बिल्डरों के उपभोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ न देने की शिकायतें भी हैं। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों तक 7वें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार पर 1,240 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र सरकार कुल खर्च का 50% पहली जनवरी 2016 से इस वर्ष 31 मार्च तक इन संस्थानों को बढ़ोतरी भुगतान करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इससे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 29,000 से अधिक शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समाज के सभी वर्गों से धर्मांतरण के मुद्दे पर खुले दिल से राष्ट्रीय स्तर पर बहस करने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में शांति महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत शांति की भूमि है, जहां सभी धार्मिक समुदाय सदियों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं और धर्म परिवर्तन उचित नहीं है। गृहमंत्री ने कहा,
कहीं पर मास कन्वर्जन जब होने लगे, बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदलने लगे, तो ये किसी भी कंट्री के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्यों? दुनिया में दूसरे देशों में चले जाइए, इवन मैं ब्रिटेन और अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहां पर जो माइनॉरिटी होती हैं वो एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने की मांग करते हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाइए। लेकिन यहां जब मैं देखता हूं कि मेजॉरिटी यह मांग करती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए, तो चिंता का विषय है।
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित जनसभाओं और रैलियों की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई को प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने और अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेने को कहा है। एक रिपोर्ट।
पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार के मद्देनजर रथ यात्रा के संशोधित कार्यक्रम पर विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग होने की राज्य सरकार की आशंका बेबुनियाद नहीं कही जा सकती और भाजपा को यह आशंका दूर करने के लिए औचित्यपूर्ण ढंग से सभी संभव उपाय करने होंगे। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले रथ यात्रा की अनुमति संबंधी भाजपा की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। प्रदेश भाजपा ने कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पिछले महीने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रथ यात्रा की अनुमति देने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। भाजपा ने 40 दिन की रथ यात्रा के कार्यक्रम को घटाकर 20 दिन करने का फैसला किया है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र।
सूक्ष्म सिंचाई को किसानों के बीच बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय आज से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आयोजित कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिन के इस आयोजन में प्रमुख रूप से सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि विषय पर चर्चा होगी।
केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह इस समय उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिन के सम्मेलन में बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किसानों सहित प्रख्यात हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में 56 देशों के 100 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 740 प्रतिनिधि शामिल होंगे और 100 कृषि वैज्ञानिक भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रमेश जायवाए, आकाशवाणी समाचार, औरंगाबाद।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार निजी एफएम चैनलों से साझा किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। कल दूरदर्शन समाचार में एक परिचर्चा में भाग लेते हुए श्री वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार वर्षों से देश में विश्वसनीय और प्रामाणिक समाचारों का मानक रहा है। उन्होंने कहा कि एफएम चैनलों से केवल हिंदी और अंग्रेजी समाचार साझा करने की अनुमति दी गई है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचारों से प्रसारण से वास्तविक क्षमता सामने आ सकेगी। परिचर्चा में आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर 400 में से 216 एफएम चैनलों ने आकाशवाणी समाचार लेने के लिए पंजीकरण कराया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे को ब्रेग्जिट के मुद्दे पर संसद में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। 432 सदस्यों के सदन में प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के समर्थन में 202 जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। आधुनिक इतिहास में ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री की ये सबसे बड़ी हार है। टेरेजा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने भी समझौते के विरोध में मत दिया। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की टेरेजा मे की 2 वर्ष की रणनीति को ये बड़ा धक्का माना जा रहा है। प्रस्ताव गिरने के कुछ मिनट बाद ही विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने घोषणा की कि उनकी पार्टी सुश्री मे सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा होगी। केन्या के नैरोबी में कल एक होटल परिसर में संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में 6 लोग मारे गए। परिसर से गोलीबारी और विस्फोट की आवाजें सुनी गई, इसमें कई कार्यालय भी स्थित हैं। कल देर रात सरकारी बयान में बताया गया कि सभी इमारतें सुरक्षित हैं। सोमालिया स्थित आतंकवादी गुट अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मरने वालों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं की गई है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से संगठन की अपीलीय संस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मौजूदा गतिरोध से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए आगे आने को कहा है। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति से संबंधित मुद्दों को हल करने संबंधी बातचीत में शामिल होने की फिर इच्छा दोहराई। उसने विश्व व्यापार संगठन के देशों को मिलकर मौजूदा संकट को सुलझाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान की अपीलीय संस्था में सदस्यों की नियुक्ति में देरी से इसका कार्य प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र में चल रहे खेलो इंडिया युवा खेलों में कर्नाटक के तैराक श्रीहरि नटराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल दो और स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही उनके कुल 7 स्वर्ण पदक हो गए। कर्नाटक के ही एसपी लिखित ने 5 स्वर्ण पदक जीते। ये दोनों खेलो इंडिया में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी में पटियाला के सरताज सिंह ने राष्ट्रीय जूनियर चैंपियन मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हराकर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मुंबई में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की हॉकी में उड़ीसा ने स्वर्ण पदक जीता। मेजबान महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद प्रियंका। नए सत्र से उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण। जनसत्ता सहित लगभग सभी अखबारों ने उच्च शिक्षा संस्थानों विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की केंद्र सरकार की घोषणा को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक शीर्षक से लिखा है, निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण देने की तैयारी में सरकार। इसका लाभ आरक्षण के दायरे में आने वाले एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को मिलेगा। कर्नाटक सरकार पर खतरे के आसार। दो विधायकों ने छोड़ा कुमारस्वामी का साथ। हरिभूमि और अन्य अखबारों ने कर्नाटक में सियासी हलचल को प्रमुखता दी है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, कर्नाटक में 7 महीने बाद फिर चढ़ा सियासी पारा। पाकिस्तान को सेनाध्यक्ष की कड़ी चेतावनी पंजाब केसरी ने प्रकाशित की है, अगर घुसपैठ की तो फिर घुसकर मारेंगे। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर रेल मार्ग से जुड़ गया है। दैनिक भास्कर ने बताया है कि नई दिल्ली और अम्ब अंदौरा के बीच रोज चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस का कल शुभारंभ किया गया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार देश में ही विमान बनाने की नीति पर विचार कर रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यों का मंत्री समूह गठित किया है। राज्य सरकारों और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को भी केंद्रीय 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मंजूरी दी गई है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आज से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।